आप हैं SBS हिंदी के साथ।
ऑस्ट्रेलिया में कोविड टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है। फाइजर वैक्सीन के बाद रविवार 28 फरवरी को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की पहली खेप भी ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है। ऐसे में क्या आपके जहन में भी ये ख्याल आता है कि हमें कब ये वैक्सीन लगेगी? क्या इसके लिए सरकार ने कोई समय नियत किया है? हालांकि इसका कोई सटीक जवाब नहीं है, लेकिन अभी इतना कहा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया सरकार की योजना कोविड टीकाकरण कार्यक्रम को अक्टूबर 2021 तक पूरा करने की है। हालांकि लोगों के मन में उठते सवालों के जवाब के लिए ऑस्ट्रेलिया के स्वास्थ्य विभाग ने एक ऑनलाइन टूल जारी किया है, जिसके जरिए आप न केवल ये जान सकते हैं कि आपको कब तक ये वैक्सीन लग सकती है, बल्कि ये भी कि क्या आप शुरुआती उन कुछ लोगों में शामिल हैं जिन्हें पहले वैक्सीन दी जानी है। इस टूल को वैक्सीन एलिजिबिलिटी चेकर कहा जा रहा है। इस तक पहुंचने के लिए आपको www.health.gov.au पर When will I get a COVID-19 वैक्सीन सर्च करना होगा, या फिर ये काम आप किसी सर्च इंजन पर भी कर सकते हैं। हालांकि इस टूल में आपको कैसे आगे बढ़ना है और ये टूल आपको क्या बताएगा, इस बारे में जानकारी के लिए हमने बात की है केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग में सलाहकार डॉक्टर दीपक राय से। डॉक्टर दीपक, बहुत बहुत स्वागत है आपका SBS हिंदी पर।
थैंक यू।
डॉक्टर दीपक, एक खास टूल जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर देखने को मिल रही है, और उसमें ये लिखा गया है कि जो वैक्सीन एलिजिबिलिटी है उसको आप कैसे चेक कर सकते हैं। वो एलिजिबिलिटी चेकर जो है वो वहाँ पर दिया गया है, इसके क्या मायने हैं?
ये वेबसाइट पहले तो ये है covid-vaccine.health.gov.au। तो ये वैक्सीन जो भी है, जैसे आपको सबको पता है कि इमरजेंसी में अप्रूव की गई है और रिस्क लोगों के लिए, जो लोग रिस्क पे हैं उनके लिए प्रायोरिटी दी जा रही है। तो रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन जो बोलते हैं, या रिस्क का जो स्टैंडर्डाइजेशन होता है, उसके लिए ये चेक कर रहा है। तो मेनली ये 3 फेजेस में रोल हो रही है, और प्रैक्टिकल पर्पजेस के लिए 2 फेजेस ही इम्पोर्टेंट है। थर्ड फेज वो 16 ईयर्स और लेस के लिए है। तो 1A और 1B जो है वो बेसिकली हाई रिस्क का, जो प्रोफेशन में है या मेडिकल कंडीशंस उनकी हाई रिस्क है, या हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, एज केयर वर्कर्स हैं, उनके लिए है। फिर फेज 2A और फेज 2B जो है वो रिलेटिवली नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए, इस तरह से डिवाइड किया गया है। तो जब आप इस पे जाएंगे तो उसमें सबसे पहले आपका एज पूछेगा, क्योंकि एज भी एक क्राइटेरिया है आपको डिफाइन करने के लिए आप रिस्क पे हैं या नहीं है। जैसे सीनियर लोग हैं वो रिस्क पे होते हैं, 65+ हैं। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आप कहाँ पे रहते हैं। वो इतना रिस्क फैक्टर उस पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन वो फिर होगा कि हर स्टेट की अपनी पॉलिसी है, उस पॉलिसी के हिसाब से आप कहाँ पे वो जाएंगे। उसके बाद फिर आपसे पूछेगा किस इंडस्ट्री में काम करते हैं, उस पर डिसाइड होगा कि आप हाई रिस्क में हैं कि नहीं। जैसे आप हेल्थ केयर में अगर काम करते हैं, या एज केयर में काम करते हैं, या डिफेंस पर्सनल में, या किसी भी तरह से फ्रंट लाइन पे इन्वॉल्व हैं, जो भी जो रिस्क है फैलने का वो क्वारंटीन वर्कर्स का है, तो वो डेफिनेटली फ्रंट लाइन में जाएंगे। जैसे डिफेंस पर्सनल है जो कि एयरपोर्ट से लेके जाते हैं उनको, या ड्राइवर्स हैं जो भी उनको लेके वहाँ से होटल या क्वारंटीन फैसिलिटीज जाते हैं, ये सारे हाई रिस्क में आएंगे। उसके बाद फिर आपसे पूछेगा कि हेल्थ केयर में है अगर, तो हेल्थ केयर में फ्रंट लाइन भी हो सकते हैं, जैसे इमरजेंसी में काम करते हैं तो वो 1A ग्रुप में जाएगा, जो टॉप प्रायोरिटी है। अगर आप इमरजेंसी में नहीं काम करते हैं या डायरेक्टली रेस्पिरेटरी उसमें इन्वॉल्व नहीं है, रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट में, तो आप 1B में जा सकते हैं। और उसकी इसी मतलब बेसिकली इस तरह से आप स्ट्रेटिफाई होते हैं कि आपका रिस्क एक्सपोजर या रिस्क कितना है, और उसके हिसाब से फिर डिसाइड करते हैं कि आप किस ग्रुप में जाएंगे, 1A, 1B या 2A, 2B में।
इसका मतलब है कि जो ये चेकर है उसमें आपको आंसर देते जाने हैं जो कि आपको, आपके लिए सूटेबल है, जिसमें जिस कैटेगरी में आप आते हैं, और फिर उसके बाद ये आपको बताएगा कि आप किस स्टेज में आपको ये मिलेगी।
जी, तो इसमें 8 क्वेश्चन के लगभग होते हैं। उसमें आपसे पूछेगा कि एज कितनी है, फिर किस स्टेट में है, काम क्या करते हैं, उसके बाद एज केयर में काम करते हैं कि नहीं, फिर वो आपको एग्जांपल देगा, पूछेगा इन हाई रिस्क में आप हैं कि नहीं है इंडस्ट्री में, फिर आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काम करते हैं कि नहीं करते हैं वो, या आपको कोई मेडिकल अंडरलाइंग कंडीशन है कि नहीं है, आप एबोरिजिनल तो नहीं है, ये 8 क्राइटेरिया होते हैं। उसके बाद आपको वो एंड में रिजल्ट बता देगा कि आप फेज 1A में हैं, 1B में हैं, 2A में हैं, 2B में हैं, जो कि सीक्वेंस के हिसाब से। अभी टाइम फ्रेम तो कोई नहीं दे सकता है कि किस टाइम फ्रेम में किस कैटेगरी को लगेगी, वो वैक्सीन के अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। बट लेकिन आपको कैटेगरी दे दी जाएगी तो आपको आगे लग जाएगा कि आपका नंबर कितने के बाद आएगा।
अच्छा, ये जो आपने कैटेगरी की बात की, उन कैटेगरी को थोड़ा समझाएंगे हमारे श्रोताओं के लिए कि क्या है उन कैटेगरी का मतलब?
तो कैटेगरी बेसिकली जैसे बताया कि रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन कैटेगरी है, तो एक यहाँ पे अथागी ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑस्ट्रेलियन टेक्निकल ग्रुप एडवाइजरी फॉर इम्यूनाइजेशन ग्रुप है, तो वो बेसिकली डिसाइड करता है कि प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए वैक्सीन की। तो उनकी प्रायोरिटी जो है वो उस रिस्क के हिसाब से कि आपका एक्सपोजर रिस्क कितना है, एक चीज होता है। दूसरा चीज है कि अगर आपको हो जाता है तो आपको सीवियर डिजीज होने के कितने चांसेस हैं। तो इस बेसिस पे मेनली ये सारी चीजें जो फॉर्मुलेट की गई हैं। तो एक्सपोजर रिस्क सबसे पहले है कि अगर आप फ्रंट लाइन पे काम करते हैं देन ऑब्वियसली आपको सबसे पहले मिलना चाहिए क्योंकि आपको सबसे ज्यादा चांस है इसका होने का, तो उस हिसाब से। और उसके बाद फिर होता है कि जैसे आप सीनियर हैं या जैसे 70-80 ईयर्स के हैं, या आपको कोई बैकग्राउंड इलनेस है जैसे ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज है, इस तरह की चीजें हैं, तो वो सारी चीजें जो होती हैं आपको उसमें एनालाइज की जाती हैं। अगर आप चाहेंगे तो उसकी वेबसाइट पे सारा हर चीज का क्लासिफिकेशन दिया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं केवल 1A का बता रहा हूँ क्योंकि अगर डिटेल में जाएंगे तो काफी टाइम लगेगा। तो फेज 1A में जैसे है कि क्वारंटीन एंड बॉर्डर वर्कर्स जो है, जैसे कि स्टाफ का एंट्री पॉइंट जैसे एयरपोर्ट है या सी पोर्ट है वहां पे जो काम कर रहे हैं, या क्वारंटीन फैसिलिटीज में जो काम कर रहे हैं, या फिर डिफेंस एम्प्लॉयज जो कि क्वारंटीन ट्रांसपोर्ट में लगे हुए हैं, या फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, ये सारे 1A में आते हैं जो कि सबसे ज्यादा रिस्क पे हैं ये डिजीज कॉन्ट्रैक्ट करने में। 1B में होता है कि फिर वो डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं कि जिनको अगर डिजीज हो गई तो ज्यादा रिस्क है उनको सीरियस होने का, जैसे कि एडल्ट्स हैं 80 ईयर्स या 70 ईयर्स टू 80 ईयर्स या ओल्डर हैं, या फिर एबोरिजिनल्स, एबोरिजिनल्स को इन्फेक्शन सीरियस होने के ज्यादा चांस होते हैं, उनको रिस्क ज्यादा होता है। तो वो सारी चीजें हैं जो फेज 1B में जिनको प्रायोरिटी मिलेगी। उसके बाद फिर फेज 2 में आ जाता है जिसमें कि नॉर्मल हेल्थी एडल्ट हैं जो 50 टू 70 ईयर्स तक हैं, या फिर अदर क्रिटिकल हाई रिस्क वर्कर्स होते हैं। फेज 2B में समझ लीजिए कि नॉर्मल पॉपुलेशन को लगेगी, या जिनको मिस हो गया होगा शुरू में उनको फेज 2B में लगेगा। फेज 3 जो है बेसिकली वो बच्चों के लिए जो कि अभी कोई वैक्सीन रिकमेंडेड नहीं है तो इसलिए अभी प्रैक्टिकल नहीं है उतना। तो ये जस्ट एक रफ गाइड आपको दे सकता हूँ मैं
जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।
थैंक यू गौरव, थैंक्स।